ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 3 और श्लोक संख्या 42। आप मेरे पीछे बोलिए, इंद्रियाणि परण्याहो, इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, बुद्धेः परसस्तु सः। इंद्रियाणि परण्याहो, इंद्रियेभ्यो परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, बुद्धेः परसस्तु सः। इंद्रियाणि परण्याहो, इंद्रियेभ्यो परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, बुद्धेः परसस्तु सः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अब मेरे पीछे बोलिए, कर्मेंद्रिया
जड़ पदार्थ की
अपेक्षा श्रेष्ठ है,
मन
इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी जड़ों के प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कार्यों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते। अर्जुन ने सवाल पूछा, अर्जुन ने क्या सवाल पूछा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, मतलब कि ये जो इंद्रिया है अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः। अर्जुन ने सवाल पूछा कि ये बड़जबरी से मनुष्य न करना चाहता है फिर भी पाप में क्यों जुड़ जाता है, ये सवाल है। तो भगवान उनका जवाब क्या देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, दैट काम जो क्रोध में से उत्पन्न होता है, काम एष क्रोध एष, क्रोध जो काम में से उत्पन्न होता है वो क्रोध ही महासनो महापापमा, ये क्रोध महासनो, महासनो मीन्स जैसे कि आग होती है तो सब कुछ समाप्त कर देती है, कुछ बचाती नहीं, इसी तरह ये जो क्रोध है वो जीवात्मा का सब कुछ हड़प कर लेता है, जल के भस्म कर देता है, महाशनो महापापमा। और ये क्रोध जो है वो क्या है, महापापमा, महापापी है। और विद्येय यह सत वैरी नाम, और एक क्रोध काम और क्रोध को तू आपका शत्रु समझो, विद्येय यह वैरी नाम, वैरी नाम मतलब कि सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा उनको जानना चाहिए। तो भगवान आगे सब श्लोक कहते हुए 42 का 42 श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि परण्याहु। तो ये जो एक काम और क्रोध जो है वो कहाँ रहते हैं, इंद्रियों में, इंद्रियों का स्पर्श जब इंद्रियों के विषय पे होता है तो उसमें से काम उत्पन्न होता है। जैसे कि आगे भी भगवान ने कहा है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यम स्थान तितिक्ष भारत। हे भारत, ये जो इंद्रिया है उनका स्पर्श इंद्रिय के विषय में होता है तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है, सुख दुख काम ये उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमको ये विज्ञान जानना होगा कि हमारी इंद्रियां कितनी है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया क्या है, हाँ, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन सी, आँख कान नाक जीभ और स्किन त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां के 5 विषय हैं। कौन से 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। नाक का विषय है गंध, कान का विषय है शब्द, और त्वचा का विषय है स्पर्श, और आँख का विषय है रूप, और रसना का विषय है रस, रसना रस, जीभ का विषय है रस, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय है। और ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, आप सब लिखो, ये अच्छा है लिखना, अंधियार है, लिखो आप। लिख लिया, आपको याद होना चाहिए। जब भी मेरे क्लास में आप आओ तो ये नोटबुक और नोट पेन एंड नोटबुक ले आओ, और वही सेम नोटबुक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। एजुकेशन, ये एजुकेशन है। तो कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञानेन्द्रिया
पांच।
कौन सी?
आंखें जी, कान, नाक, जीभा, स्किन।
वेरी गुड। और उनके विषय कौन से हर इंद्रिय के? क्या नीलम? सब
नाक का गंध, जीभ का रस,
रूप। तो ये इंद्रियों के विषय है। सो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपको कंठस्थ होना चाहिए, और इंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा सरल है, सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि ये प्रिलिमिनरी, बहुत प्रिलिमिनरी मतलब कि पाया का ये शुरुआत का ये क्लास है। तो जब इंद्रियां ये विषयों में फंसी रहती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? विषय सुख। हर जीव विषय सुख में पड़ा रहता है, विषय सुख के पीछे भाग दौड़ करता है हर जीव, अपनी इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों का खोराक देना। जैसे जीभ है, जीभ को पकोड़े चाहिए तो जीभ को टेस्ट आए, है ना? तो हम पकोड़े उनको देते हैं, समोसे देते हैं, जो भी प्याज लहसुन मीट फिश एग जो भी सब कुछ, ये विषय है। ऐसे ही शब्द कान का विषय है, तो रॉक एंड रोल म्यूजिक है, सिनेमा के सॉन्ग हैं, या तो हर किस्म का म्यूजिक कान को सुनने को अच्छा लगता है, तो ये विषय है। उसी तरह रूप ये आँख का विषय है। जब कोई सुंदर विभूति जा रही है तो आँख से हम देखते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होता है, हो जाते हैं। जैसे कि हम अभी उज्जैन उज्जैन में गए थे तो वहाँ कोई आई थी नटी, मतलब कि एक्ट्रेस, उनका नाम था आराधिका, रानी मुखर्जी। तो हमने उनके आगे राधा रानी मुखर्जी लगा दिया। राधा रानी मुखर्जी के पीछे लोग पागल हो गए। तो ये आँख का विषय है, आँख से रानी मुखर्जी की ओर आकृष्ट हो जाते। जैसे पतंगा होता है तो ये जो फायर होता है, अग्नि आग, तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसमें जाके मर जाता है, फंस जाता है, मर जा। हर विषय आपके आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। पतंगा ये सुंदरता से आकर्षित होता है और उसमें बलिदान हो जाता है उसका। जैसे हिरण होता है, हिरण तो जो शिकारी होता है सुंदर वायलिन म्यूजिक बजाता है और हिरण मुग्ध हो जाता है, और ये हिरण को शिकारी शिकार कर लेता है। तो हर विषय है, जैसे कि कीन है, उस कीन है ये स्पर्श, जैसे कि एलिफेंट सबका मोबाइल बंद कर देते हैं, मेरा पीछे रख के आया, सबका मोबाइल ऑफ है, ठीक है, क्योंकि बहुत मोबाइल होते हैं सबके पास। तो स्किन मतलब जो भागवताम कहता है कि इट इज लाइक रबिंग टू हैंड टुगेदर, दो हाथ हम ऐसे। तो इट्स अ सेक्स इज द विषय स्किन के लिए. तो एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट्स जब पकड़ना होता है तो क्या करते हैं कि जो लेडी एलिफेंट है उनको आगे रखते हैं और जो मेल एलिफेंट है पीछे, उनके पीछे आकर्षित होता है. तो बड़ा गड्ढा खोदते हैं लोग और बहुत बड़ा कुआं जैसा गड्ढा खोदते हैं और जो लेडी एलिफेंट है उनको आगे प्रसार किया जाता है और जो पीछे आने वाला एलिफेंट है वो गड्ढा पर घास फूस लगाया जाता है तो उनको पता नहीं गड्ढा, तो उसमें गिर जाता है तो वो फंस जाता है उसमें और पकड़ लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं. तो दिस इज लाइक ए स्किन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस और गंध. तो हर विषय का मौत, हर विषय में मौत रहा है. तो ये जो इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो वो इंद्रियां के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. और ये दोनों जब एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उसको बोलते हैं विषय सुख, उनको इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो प्रभुपाद ये वर्ड, ये शब्द बहुत उपयोग करते हैं प्रभुपाद जी, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि नो विषय सुख. विषय सुख हमको इंद्रियों को, इंद्रियों के गंदे विषयों का सुख देना नहीं चाहिए. तो हायरार्की भगवान यह बता रहे कि इंद्रियाणि परण्याहुर, इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषयों से उनकी इंद्रियां ऊपर है, एबो ऊपर, और इंद्रियों के ऊपर मन है. इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः, इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन. तो मन की परिभाषा क्या है? मन की परिभाषा ये है कि विचारों का सतत प्रवाह, उनको बोलते हैं मन. मन किसको बोलते हैं? विचारों का सतत प्रवाह. मन का मतलब ब्रेन नहीं, मन का मतलब, मन का सर्जिकल ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता. ब्रेन का सर्जिकल ऑपरेशन होता है. ये मन, जैसे हमारे तीन प्रकार के शरीर हैं हमारे, कितने शरीर हैं? तीन. एक है स्थूल देह. स्थूल देह मतलब ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जो शरीर बना है जिसमें इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पाग, मल, मूत्र, वाणी. ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां. एक ज्ञानेन्द्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और दूसरी कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मल और मूत्र की इंद्रियां और वाणी. तो ये कर्मेंद्रिया है. तो इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः. तो इंद्रियों से पर कौन है? मन. और मन की परिभाषा क्या है? कि विचारों का सतत प्रवाह. तो मन को सरिता नदी के साथ उनकी उपमा दी गई है. सरिता नदी, जैसे कि नदी जो होती है, नदी की परिभाषा क्या है? कि पानी का सतत प्रवाह, उनको बोलते हैं नदी, पानी का सतत प्रवाह. उसी तरह विचारों का सतत प्रवाह, उनको बोलते हैं मन. तो जब मानसून सीजन होती है, रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में पानी नदी में बहुत तेजी से बहता है ना? तो पानी कैसा होता है? मड़ी है ना, गंदा होता है, गंदा, मड़ी, मटमैला, जो भी. तो उसी तरह जब हमारे मन में विचार बहुत तेजी से आते हैं, इनको मार दिया, उनको मारूंगा, ये पैसा बनाया वो बनाऊंगा, कल इनको फायर करना है, कल इनको हायर करना है, कल ये करना है, वो कहीं कहीं ये स्टॉक एक्सचेंज में डाउन है, ये अप है, वो करूंगा, ये करूंगा, यू नो, तो अपना मन कैसा हो जाता है, मड़ी मड़ी, और उनमें से क्या पैदा होता है, टेंशन, उनमें से क्या पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है। जब विचार बहुत सतत कॉन्स्टेंटली तेजी से आते हैं विचार, तो मन प्रदूषित हो जाता है। लेकिन ये जो गर्म सीजन होती है, समर सीजन, तो समर सीजन में नदी का पानी बहुत बहुत स्टेडी, कम प्रवाह होता है, तो पानी कैसा होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होता है ना, स्टेडी प्रवाह कम। तो ऐसे विचार हमारे, जब हम हरे कृष्ण मंत्र की माला करते हैं तो कई लोग बोलते हैं हमको नींद आ जाती है, क्लास सुनते हैं तो हमको नींद आ जाती है, ऐसा क्यों, कि हरे कृष्ण महामंत्र से मन शांत हो जाता है, मंत्र, मन को जो मुक्ति देता है उनको ना, उनका नाम है मंत्र। तो जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे मन की क्या हो जाती है, मुक्ति, शांत हो जाता है मन, मन शांत हो जाता है, और शांत मन आराम से नींद में लग जाता है। तो जब विचारों का प्रवाह बहुत धीरे 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 आता है, और विचार एक ही चीज पर, विचार सतत वह एक चीज पर रहेगा, कृष्ण भगवान के चरणों में हमेशा विचार वहाँ ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं समाधि। भगवान के चरणारविंद में हमारा मान विचार, उनके चरणार में एक ही विचार, तो उनको बोलते हैं समाधि। मतलब कि हमारा मन बहुत शांत है, और उनमें हम शांति अथवा सुख आनंद का अनुभूति कर सकते हैं। तो ये मन है, मन, मन की मन को, हाँ, ये रिसेप्शनिस्ट क्लर्क जो होती है, बड़ी बड़ी ऑफिसों में, इंटरनेशनल फर्म जो होती है, उनमें जाओगे तो फ्रंट में आपको क्या मिलेगी, सेक्रेटरी मिलेगी। तो सेक्रेटरी क्या करती है, फोन उठाती है हर रोज, जो भी फोन आए उनके पास पहले जाते हैं, जो भी बाहर से आया, डाक आया और विजिटर आया, जो भी आया, सेक्रेटरी, और बाद में सेक्रेटरी उनको आगे पहुंचाती है। तो अगर सेक्रेटरी जो है वो ही सब कागज का, यू नो, डिसीजन लेगी, सब मैसेज आते हैं उनका डिसीजन लेगी, तो फैक्ट्री बराबर नहीं चलेगी। रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए, कि उनके बॉस जो आगे हैं उनको सब कुछ पहुंचाना चाहिए, है ना, तो व्यापार ठीक चलेगा। तो इसी तरह मन जो है उसमें बाहर के जगत के विषयों का ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा हमारा कहाँ संदेश जाता है, अंदर मन में, है ना, तो मन ये संदेश रिसीव करता है, और बाद में ये सब विचार जो है वो बुद्धि को देना चाहिए, कि यहाँ एक पहलू है कि आँख कहती है कि मैं सिनेमा देखने जाऊंगी, और दूसरी ओर है कि बुद्धि कहती है कि चलो मंदिर जाएं। तो ये दो पहलू हुए, आँख कहती है, तो एक तो मंदिर जाना भगवान के दर्शन के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए, और सिनेमा गृह जाना मूवी का दर्शन करने के लिए। तो ये विचार है आंखों में से कहा जाता है मन में, और मन कहा ले जाएगा उनको, उनका बॉस, मन का बॉस कौन है, बुद्धि। तो बुद्धि की परिभाषा है कि अच्छा बुरा जांचने की जो शक्ति है, ये डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, उनको बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि जो है वो अच्छा है क्या, बुरा है क्या, वो बताएगी। तो बुद्धि कहेगी मंदिर चलो, सारी इंद्रियां पवित्र हो जाएगी, मन भी पवित्र हो जाएगा, बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, और वहाँ और ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख मिलेगा। और यहाँ सिनेमा में जाएंगे तो वहाँ से काम पैदा होगा, नटी नट सब कुछ, लस्टी मूवियाँ होती हैं, जो भी मूवी देखो नटी और नट के बिना होती नहीं है, तो वो हमारे अंदर गंदे विचार डालती है मूवी, और वो मन भी प्रदूषित हो जाए, बुद्धि भी प्रदूषित हो जाएगी। तो ये काम जो है पैदा होगा, और ये काम कभी भी महाशनो महापापमा, ये सब कुछ खाने वाला शत्रु है। तो बुद्धि कहेगी मंदिर चलो, और इंद्रियां आँख मन कहेगा चलो हम सिनेमा गृह जाते हैं, है ना, टीवी थोड़ा ऑन कर लेते हैं, भगवान का नाम बाद में करेंगे, अभी तो घर में ही मूवी आ गई, थिएटर आ गया, होम थिएटर। तो ये है बुद्धि। बुद्धि है डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, बुद्धि जो है अच्छा बुरा जांच नहीं सकती, उनको बुद्धि कहते हैं। तो इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो। मन से पर क्या है? बुद्धि। तो बाहर के जगत का जो भी विषय आपकी इंद्रियों को स्पर्श करे, तुरंत विषयों में से विचार जो पैदा होगा, जो मन को जाए, मन पास जाएगा, और वो विचार मन रिसीव करेगा, रिसेप्शनिस्ट, तो वो विचार कहाँ जाना चाहिए? बुद्धि को देना चाहिए। और बुद्धि क्या करेगी? अच्छा बुरा जांचने की शक्ति है। तो बुद्धि कहेगी ये करो, लेकिन हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, विषय ही हमको आकर्षित कर लेते हैं, हम विषय में ही फंस जाते हैं, हार जाते हैं। हमको चाहिए कि नहीं फंसना है, लेकिन ये विषय इंद्रियां आपको पांच दिशा में खींचती है, पांचों इंद्रियां, आंख इधर खींचती है, नाक उधर, और कान उधर, और जीभ उधर, और रूप आँख कान नाक जीभ त्वचा, पांचों दिशा में हमको खींचती है। अगर आपको पांचों दिशा में पांच दुश्मन आपको खींचे, और बहुत ऐसा नहीं खींचे खाली मजाक के लिए, बट आपकी खिंचाई करें, तो आपका क्या हाल होगा? लंबे हो जाओगे ना। तो ये हमारा हाल है, हमारी इंद्रियां हमारे काबू में नहीं है। तो इसको बोलते हैं विषय सुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वी हैव टू स्टॉप दिस, हमको ये विषय सुख छोड़ देना है। नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को इंद्रियों के गंदे विषय नहीं देना है। सो इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर कौन है?
आत्मा।
आत्मा। तो इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा। तो हम ये कह रहे थे कि विषय सुख छोड़ो। तो हम ज्यादातर जो हमारी इंद्रियां हैं पांच दिशाओं में हमको खींचती हैं। यहाँ एक चित्र है, शायद हो ना हो, पुरानी भागवत गीता में ये पिक्चर आता था। तो ये घोड़े थे, पांच घोड़े। तो ये जो ये रथ हो, उसके पांच घोड़े हो, तो ये रथ है, पांच घोड़े हैं, तो पांच घोड़े रथ को पांच दिशा में खींचेंगे, तो रथ की हालत कैसी होगी? ऐसी हमारी हालत। तो इसी तरह हमारी हालत होगी। तो इसीलिए हमको ये इंद्रियों को काबू में करना है, उसको बोलते हैं योग। योग 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 इंद्रिय संयम, योग का मतलब है इंद्रियों को संयम में लाना, उनको बोलते हैं योग। हमारा सहज योग क्या है? भक्ति योग। हमारा योग का कौन सा है? भक्ति योग। तो भक्ति योग से इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है, क्योंकि ये भक्ति योग में कोई आर्टिफिशियली इंद्रियों को सप्रेस नहीं करना पड़ता है, इंद्रियों को जबरदस्ती से हमको काबू में लाना नहीं होता है। जैसे कि जीभ को अलग अलग व्यंजन चाहिए तो ठीक है, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद खाओ, तो करना वही है लेकिन भगवान के संबंध में, है ना। मूवी देखनी है ठीक है, आप देखो रामायण है, महाभारत है, कृष्ण सीरियल है, कई कई सीरियल है, तो करना वो है लेकिन भगवान के संबंध में। तो ये भक्ति योग ये सरल योग है। तो हमारी इंद्रियां कैसे काबू में आएंगे? जब हम बाहर के जो विषय है वो हम स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे। अगर हम आँख से भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे तो आँख पवित्र होगी, मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। लेकिन आँख से हम गंदा पदार्थ देखेंगे, गंदी चीजें हम आँख को देखेंगे तो आँख प्रदूषित हो जाएगी, मन प्रदूषित हो जाएगा, बुद्धि प्रदूषित हो जाएगी। तो हमारी इंद्रियों को चाहिए कि हम भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध में ही सब विषय दें। जैसे सुनना है तो सुंदर भगवान के कथा वार्ता कीर्तन सॉन्ग भजन सुनो, कान पवित्र हो जाएगा। सुनना है तो सुनो तुलसी, भगवान के चरणों की तुलसी, भगवान के चरणों के फूल हार वगैरह वगैरह, इंसेंस अत्तर, तो वो उनसे हमारी इंद्रिय ध्रांड्रिया नाक पवित्र हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि विषय सुख छोड़ो, विषय छाड़िया, शेर से माजिया, मुखे बोलो हरि हरि, विषय छाड़िया। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि विषय को छोड़ो, सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ो, मतलब कि इंद्रियों के गंदे जो विषय हैं उनको छोड़ो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हेरिबो वृंदावन, जब मैं विषय कब मैं विषयों को छोड़ दूंगा ताकि मैं वृंदावन देख सकूं। Anyway, I forgot that line. तो विषयों को पवित्र करना है, है ना? तो हमारी इंद्रियां पवित्र, इंद्रियां पवित्र तो मन पवित्र, मन पवित्र तो बुद्धि पवित्र, और बुद्धि पवित्र तो आत्मा का काम आसान हो जाता है ना? तो ये हायरार्की है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में क्या है? ये हायरार्की है कि बाहर के विषय, जगत के विषय, विषयों से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, और आत्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा। तो आत्मा को चाहिए परमात्मा को काउंसलिंग करें, परमात्मा को पूछे क्या करो। तो उपद्रष्टा उन्मन्ता, भगवान उपद्रष्टा है और भगवान उन्मन्ता है, मतलब कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्मों का फल भगवान देते हैं। खराब कर्म करोगे, इंद्रिय तृप्ति खराब, तो खराब फल देंगे भगवान, और अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे। तो ये हमारा हमारा शरीर का हाल है। तीन शरीर हमारे कौन से? एक तो स्थूल देह, स्थूल है किसका बना है? एक ये इंद्रियों का, दस इंद्रियों का स्थूल देह, मतलब ये जो हाथ पांव मल मूत्र वाणी और आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये हमारा स्थूल देह है ना। बाद में है सूक्ष्म देह, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म देह कौन किसका बना है? मन बुद्धि अहंकार। और कारण देह वो है आत्मा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ये कारण देह है, वो आत्मा है। तो ये तीन हमारे देह है। तो जब ये हम शरीर छोड़ते हैं तो हम साथ में क्या ले जाते हैं? ये सटल बॉडी, आई मीन हमारे जो सूक्ष्म इंद्रिया है, इंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार और वासना, ये हम साथ में ले जाते हैं। तो जैसी ट्रेनिंग आपकी इंद्रियों को अभी दोगे, वैसा शरीर आपको आगे मिलेगा, है ना? शरीर दूसरा मिलेगा ही आपको, लेकिन जैसे इंद्रियों को ट्रेनिंग दोगे वैसा शरीर मिलेगा आगे। अगर गंदी चीज खाना आपको पसंद है तो आपको सुअर का सुअर या हॉग, क्या बोलते, सुअर ही बोलते हैं ना, सुअर का आपको जन्म मिलेगा। एंड तीसरी कारण देह, कारण देह है आत्मा। आत्मा मतलब सच्चिदानंद आत्मा है। तो ये कारण देह कारण है, दूसरे देहों का कारण ही आत्मा है। तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म, आई मीन कारण देह। तो हमको क्या करना है? पहले इंद्रियों को अच्छा विषय देना है, भगवान के संबंध में, भक्तों के संबंध में इंद्रियों को लगाना है। उनको बोलते हैं भक्ति। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति किसको बोलते हैं? मतलब भक्ति किसको बोलते हैं? हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, उनको बोलते हैं भक्ति। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सब उपाधियों से मुक्त होकर हमको, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधियों से मुक्त होके तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल होके हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, उसको बोलते हैं। तो हमारी इंद्रियां भक्ति में लगानी चाहिए। तो वो कोई कड़ा काम नहीं है, करना वही है जो हम कर रहे हैं। खाना ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो लेकिन भगवान को भोग लगा के, ऐसा नहीं कि सुनना बंद कर दो लेकिन भगवान के संबंध में या तो भक्तों के संबंध में सुनना, आंखें भगवान के भक्तों के संबंध में, तो यही करना है। तो भगवान यह कहते हैं कि अगर ये काम रूपी शत्रु को, क्रोध रूपी शत्रु को आपको जीतना है तो ऐसी हायरार्की हमारे शरण में देखनी चाहिए और इसके मुताबिक हमको सब शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। सब विषयों से इंद्रियां पवित्र हो, पवित्र इंद्रियों से मन पवित्र हो, मन से बुद्धि पवित्र हो, तो हमारी सारी हायरार्की पवित्र होगी। मतलब कि स्थूल शरीर पवित्र हो जाएगा और मन भी पवित्र हो जाएगा, बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं भक्ति। तो ये काम और क्रोध को वश करने के लिए हमको ये सब समझना चाहिए कैसे हमारा तीनों शरीर काम करते हैं। तो आज इंद्रियों को पवित्र करो या कल या कई जन्मों के बाद, लेकिन करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि यही जन्म में हम हरे कृष्ण महामंत्र का रटन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है?
तो
माला से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी चीज प्रदूषित हो, गंदी हो गई हो, उनको पवित्र करने वाला एकमात्र साधन है भगवान का नाम। भगवान का नाम परम पवित्र है, तो भगवान का नाम परम पवित्र है तो कोई भी चीज को पवित्र करना है तो क्या बोलना करना चाहिए, भगवान का नाम बोलना चाहिए, तो पवित्र हो जाता है। हरे नाम ये बोलते बोला
हमारा ये रह जाता है। आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है तो हमारा शरीर कष्ट कौन से शरीर को मिलता है, ऊपर
जाके। देखो सटल जो आपका सूक्ष्म देह है ना, सूक्ष्म देह मन बुद्धि अहंकार वो आपके साथ रहता है, और ये इंद्रिया का वासनाएं जो होती है, इंद्रिया में वासना है ना, सब इंद्रियों में, जैसे कि काम की वासना, सेक्स की वासना हो, या किसी में वासना रह गई हो, पिता में, माता में, पत्नी में, पति में, कईयों में हमारी वासना भी रह जाती है, तो वो बाद में क्या बनते हैं, भूत बनते हैं। भूत का मतलब कि स्थूल देह नहीं होता, सटल बॉडी सूक्ष्म देह होता है और कारण देह होता है। भूत का मतलब क्या है, कारण देह और सूक्ष्म देह, तो उसको बोलते हैं भूत। तो भूत जिसमें वासना रह जाती है उसके ऊपर घूमता रहता है ना, तो ये जो सटल बॉडी सूक्ष्म देह और कारण देह वो जाता है। तो आपका सवाल है कि दुख यातना आत्मा को एक सूक्ष्म देह जो है उनसे यातना आत्मा को मिलती है। आत्मा वैसे आनंद में अभ्यास आनंदमय है, लेकिन जब आत्मा माया के फंदे में समझ लेता कि शरीर ही मैं हूँ, वो शरीर के साथ एक हो जाता है, इसलिए उनको शरीर का दुख मिलता है, समझे ना। तो दुख जैसे पाप कर्म किए हो आपको, तो आपका सटल शरीर सूक्ष्म शरीर और आत्मा नरक में जाएगी, नरक में वेतनाएं दुख सब कुछ यातना दुख सब कुछ, रिफॉर्म हो जाएगा जीव, है ना, बाद में उनको यमदूत यमराज उनको दूसरा शरीर देगा, दूसरे शरीर में जाएगा वो। तो जब तक ये आत्मा इंद्रियों को पवित्र न करे, विषयों को पवित्र न करे, तब तक विषय सुख में विषय छाड़िया से रसे माझिया, तो विषय जब तक हम छोड़ते नहीं, मतलब कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की गंदी रीत से तृप्ति करना, तो ये इंद्रियों को जो गंदा खुराक देना, ये जब सब हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी पवित्रता नहीं आएगी। इसलिए अभी इंद्रियों को पवित्र करो या कई कई करोड़ों जन्मों के बाद, लेकिन करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि हम अभी इंद्रियों को पवित्र करते, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, चार नियमों का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण के नामों का रटन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे इंद्रियां पवित्र हो जाएगी। तो ये अभी क्यों ना करें। तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, इहार यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मन शरीर मन वाणी से इहार यस्य हरेर दास्य कर्म से मनसा मन से और गीरा वाणी से जो भगवान की सेवा में लगा है, तो वो क्या है, मनसा गिरा निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त से उचित, यही जीवन में यही शरीर में वो मुक्त हो जाएगा, आध्यात्मिक उनको उनका शरीर आध्यात्मिक हो जाएगा, उनका शरीर दिव्य हो जाएगा। तो यहाँ ही यहाँ ही उनका शरीर दिव्य, इनको दिव्य शरीर, ये शरीर है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जैसे प्रभुपाद जी का शरीर है, गौर किशोर दास बाबा जी का शरीर है, वैसे हमारा रूप सनातन सद गोस्वामियों का शरीर है ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये शरीर जो है हमारा दिव्य बन जाएगा, दिव्य शरीर बन जाएगा।
लेकिन महाराज जी हम इतनी प्रगति ना कर पाए थे,
फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं वैकुंठ के बैक डोर में खड़ा रहूंगा, पिछले गेट पे, आप पिछले गेट आ जाओ। तो कृपालु कृपा सिद्धि, ये गुरु से गुरु गुरु कृपा सिद्धि है। हमारे गुरु प्रभुपाद जी पिछले डोर पर खड़े रहेंगे और जाओ कुछ रह जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ रह जाए, कि हम गंदे गंदे हैं और प्रभुपाद जी को कहें हम गंदे हैं हम आ जाए, वो नहीं बनेगा। हम प्रयत्न जारी रखें, संपूर्णतः प्रयत्न करें, बाद में कुछ कमी रहेगी तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु दोनों कह रहे हैं कि वो कमी मैं पूरी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है योग क्षेम वहामि, हम जो कमी रह जाएगी मैं उनको पूरी करूंगा। तो कमी, लेकिन हम प्रयत्न ही नहीं करें और कृपा सिद्धि की बात करें कि कृपा हो जाएगी, नहीं।
जैसे हमारा वाणी भी तो लगी है और हम कर्म द्वारा भी भगवान की सेवा कर रहे हैं,
वाणी भी लगी है क्या,
मतलब वाणी भी हमारी भगवान की सेवा में लगी है,
वाणी
वाणी
वाणी वाणी,
और हम कर्म द्वारा भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन अच्छे से नहीं लग रहा, तो फिर हमारा क्या होगा।
तो भगवान आपका कल्याण करेंगे ही, जैसे कि यम यम वापी स्मरण भाव, जब अंते जो मन भगवान का नाम नहीं ले पाए तो क्या होगा, तो हमारी भगवान देखभाल कर लेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान थैंकलेस है ना, भगवान कृपालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, कृष्ण कृपालु है, चैतन्य महाप्रभु कृपालु है, प्रभुपाद जी कृपालु है, तो चिंता मत करो, लेकिन सिंसियरली ये जीवन में हमको 16 माला, 4 नियम, भक्ति, ये सिंसियरली करना है।
वही मैं पूछना चाहता कि हमें कहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए भक्ति में, जैसे भी 16 माला और जप कर रहे हैं ना, फिर भी अभी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमें कहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और हमें क्या चीज करनी चाहिए।
वो गुरु से परीक्षा करना चाहिए हमेशा, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, विश्रम देन आदो गुरु पाद आश्रय, सबसे पहला भक्ति में गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, बाद में कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, कृष्ण भगवान की दीक्षा आदि का शिक्षण लेना चाहिए, बाद में विश्रम बेन गुरु सेवा, बाद में विश्रम कोई भी डाउट के बिना, कोई भी शंका के बिना गुरु की सेवा करना चाहिए। तो गुरु की सेवा करो, आश्रय लो उनका गुरु का और गुरु की सेवा करो, गुरु बताएंगे बताते रहेंगे आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इसलिए गुरु की जरूरत है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि छोटी सी कारपेंटरी आपको सीखना हो, ये लकड़ी का मिस्त्री बनना हो तो लकड़ी के मिस्त्री के पास सीखना पड़ेगा कि आप बन जाओ। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो गुरु गुरु के सान्निध्य, गुरु की शिक्षाएं, गुरु का पृच्छा, कृष्ण दीक्षादि शिक्षण पृच्छा, क्या पृच्छा करनी चाहिए, हाँ एनीवे पृच्छा करनी भगवान श्री कृष्ण और उनके बारे में पृच्छा करनी चाहिए, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना है ये पृच्छा है, ये प्रभुपाद ने लिखा है, उसको पढ़ो और प्रभुपाद जी आपको क्या रहे तात्पर्य में, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ोगे, सुनो लेक्चर सुनो, तो इसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोई सवाल
महाराज जी, ऐसे हम कई बार जैसे हम भी कर रहे हैं, सुबह हमने 16 माला करी और जब किया भगवान का तो भी कुछ मुश्किल पड़ी, फिर हम बिजनेस रूटीन में अपने जा गए, तो कई बार ऐसे कर्मियों से बात करनी पड़ जाती है और उनसे यानी कोई उल्टी सीधी बातें और बाद में
ये अलग कर दो, दोनों चीजें अलग कर दो, व्यापार व्यापार करो, वहाँ व्यापार जो है उनको व्यापार प्योर रखो। ये व्यापार आप भक्त हो इसलिए व्यापार से जो उपार्जन होगा वो भगवान के लिए उपयोग करोगे, भक्तों के लिए उपयोग करोगे, आपके घर के लिए, घर के सब भक्तों के लिए। तो उपार्जन जो है वो दोष वाला होगा। जैसे आप जैसे दोष से काम करोगे तो भगवान की सेवा में लगाओ तो पवित्र हो जाएगा। तो ये दोनों को अलग कर दो, बिजनेस को अलग कर दो अलग जगह और भक्ति को अलग अलग कर, दोनों को मिक्स मत करो।
लेकिन महाराज जी वो लोग कहते हैं ना, फिर बाद में जैसे बिजनेस मान लो मेरे प्रभु जी जाते हैं मार्केट में तिलक वगैरह लगा कर जाते हैं, फिर उनको गुस्सा करो तो वो कहते हैं वैसे तो बड़े भक्त बनते
हैं फिर यही कहते हैं
और आप ऐसे पैसे मांग रहे हो, डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो।
कई लोग ऐसे कहते हैं।
नहीं देखो भक्त लोग गुस्सा नहीं करते ऐसा नहीं है। हनुमान जी गुस्सा करके तो लंका जलाई, लंका शांति से जलाई कि मैं जलाऊंगा, मैं देखूंगा, थोड़ा आधा घंटा के बाद जलाता हूँ। गुस्सा अर्जुन जी ने युद्ध लड़ा सारा कुरुक्षेत्र में, तो गुस्से लड़ा कि शांति से। भीष्मदेव आप देख लो मैं बाण छोड़ रहा हूँ, शांति से छोड़ रहा हूँ, देख लो ना ऐसा। तो गुस्सा भक्त भी करते हैं लेकिन सही जगह पर सही गुस्सा करना ही चाहिए। तो इन लोगों को इन कर्मियों को कुछ समझाने की बात नहीं है कि भाई ठीक है मैं भक्त हूँ, भक्ति भक्ति जगह में भक्ति करता हूँ, लेकिन यहाँ आपकी गलती है और आपको डांट पड़ेगी ही। गंदे लोगों को क्या सवाल दे जवाब देना है, उनके साथ गंदा ही व्यवहार करना पड़ेगा। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मतलब चलो घर वालों से सुन लो क्या तकलीफ है, सुन लेने में क्या तकलीफ है। हाँ घर वाले बड़े हैं, ससुर है, पिता है, पति है, कई है, तो उनको उनको सुन लो, सहन कर लो, तो हमारी भक्ति जारी रहेगी। अगर हम जवाब दे देंगे कुछ उल्टा सुलटा कर देंगे तो हमारा भक्ति का जीवन थोड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा है सुन लो, ठीक है आप कहो ठीक है, बाद में करो वो जो करना है आपको, तो वो लोग समझेंगे तो सुनेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन जवाब दोगे तो तकलीफ हो जाएगी। सुनो सभी, सुनो सबकी, करो मन की। तो ये टेस्ट है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगन, ये टेस्ट है। रसना को टेस्ट चाहिए, गंदा अच्छा नहीं। जब भगवान का चरणामृत, भगवान का वो कुछ नहीं चाहिए, उनको उनको गंदा चाहिए।
फिर शरीर में बोली जैसे चाय नहीं पीते तो आलस्य रहता है।
नहीं देखो ये एक दो दिन होगा, एक दो दिन होगा, बाद में
चाय नहीं पीते।
देखो ये श्रीनिवास आचार्य जो थे अभी दीक्षा ली उनने मेरे से, तो वो दिन में 20 बार चाय पीते थे। कितनी बार?
20
बार। छोड़ दे, छाड़ दिया, मुझको नहीं चाहिए गंदी चीजें। तो भगवान का बल, गुरु का बल और अपना बल लेके ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, छोड़ दिया। हम लोग ऐसे भक्त बने कि प्रभुपाद को और गुरु और कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, तुरंत फेंक दो उनको, उनको फेंक दो। गुरु और कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता है, फेंक दो, और जो अच्छा लगता है स्वीकार करो। भक्ति विनोद कृष्ण भजन स्वीकार करो तह प्रतिदिवसे अनुकूल अनुकूलतः प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार कहो इतः। जो भक्ति में अनुकूल है उनका स्वीकार करो, प्रतिकूल है उनको छोड़ दो तुरंत। प्रतिकूल के इनका नाम शरणागति है। शरणागति मतलब कि जो अनुकूल है उनका स्वीकार करना, प्रतिकूल है उनको छोड़ देना, ये शरणागति है। शरणागत होना चाहते हो कि शरणागति नहीं लेना चाहते हो? तो अनुकूल है स्वीकारो, प्रतिकूल है छोड़ दो तुरंत। जो भी हो मेरा सर फट क्यों ना जाए, चाय नहीं चाहिए,
चाय और कृष्ण,
टी और मी। तो कल से छोड़ दो चाय, ठीक है।
नहीं नहीं, आप पहले छोड़ दो कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, तुरंत मुझको नहीं चाहिए, चाहे मेरा सर फट जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मुझको ये नहीं चाहिए। संकल्प, संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति। और कोई सवाल? कैसे भी देखो, कैसे भी करो, लेकिन उनमें चाहे तो मन लगा लो, चाहे तो सुन लो भगवान का नाम, भगवान का नाम का ध्यान करो, मुंह से बोल दो, ये क्रियाएं करो, जैसे भी करो, जैसे भी हो, लेकिन जितना हो सके भगवान में नामों में ध्यान, या नामों को बोलो, या नामों को सुनो, तीनों हो जाएगा तो अच्छा है। देखो, भक्ति सहज योग है, उसमें कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन डालने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती से कुछ ऐसा सहज रीत से आपको भगवान में प्रेम होगा। जैसे पति में प्रेम होता है तो पति को अच्छा नहीं लगता है तो आसानी से छूट जाता है ना, कि पति को अच्छा नहीं लगता है वही वो करते रहे, उनमें प्रेम है तो चलो उनको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह भगवान में भी लगोगे तो भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है वो निकल जाएगा।